ओम शांति। अभी हम इनवाइट करते हैं आदरणीय सोना बहन जी को। सोना बहन जी, सोना बहन जी को 1987 में ऐश्वर्य ज्ञान चंडीगढ़ से प्राप्त हुआ और फिर 1994 से 2008 तक 14 साल आपने ऑस्ट्रेलियन बाबा की सेवाएं की समर्पित रूप से, और 2008 से आप आबू धाबी में बाबा की सेवाएं कर रहे हैं। तो आपको सभी वैरायटी धर्म, वैरायटी कम्युनिटी के लोगों की सेवा करने का विशेष अनुभव है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जो भी है, सभी की सेवाएं करने का विशेष अनुभव है। तो विदेशों में रहते हुए सेवा करते हुए किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी रुकावटें आती है और कैसे उनको फेस कर करके आगे बढ़ते हैं, बाबा की सेवाओं को वृद्धि और विस्तार देते हैं। तो ये बहन जी के पास विशेष अनुभव है और बहन जी का कोरोना पर विजय का भी विशेष अनुभव है। तो बहन जी अभी अपने अनुभव बताएंगी, सभी को सुनाएंगी कि कैसे हमको बाबा की सेवाओं को वृद्धि विस्तार करना है और विदेशों में बहन जी को बाबा के साथ के मदद के कैसे कैसे अनुभव हुए हैं। तो हम बहन जी के मुख से सुनेंगे। आदरणीय सोना बहन जी।
शुक्रिया अनिल भाई। तो ओम शांति। पहले तो आप सबको बहुत बड़ा स्वागत मधुबन में, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, मैं खुद ही उसमें शामिल हूँ, इंक्लूड हूँ, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे मधुबन आना बहुत बड़ी चीज है ना? आप भी तो अंदर फील कर रहे होंगे दुनिया में कहाँ लॉकडाउन फिर अनलॉक, भारत में भी यही हालत है और बाबा ने ऐसे रास्ता बना लिया है जो हम यहाँ पहुँच सकें और यहाँ होने का लाभ भी ले सकें और थोड़ा सा अपना रूहानी प्रोग्रेस उन्नति कर सकें। तो जैसे अनिल भाई ने बताया, मैं काफ़ी छोटी उम्र में 16 साल की थी जब मैं बाबा के पास आई, वो भी अपने फैमिली के साथ, माता पिता के साथ। और उन दिनों में चंडीगढ़ में छोटा सेंटर था और हम सेंटर के बहुत नज़दीक रहते थे, तो बाबा तो आत्मा को एकदम पकड़ लेती है ना। बाबा का ज्ञान सुनते ही बचपन से जितने भी मेरे अंदर प्रश्न थे भगवान के बारे में, वो सब जैसे मुझे एक सेकंड में सब जवाब मिल गए। आप लोग में से भी ऐसे कोई होंगे ना जो ज्ञान में आने से पहले मनन चिंतन करते होंगे ना कि ये ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों कहते हैं, नहीं? और करते भी हैं परंतु अंदर से फील नहीं होता कि ये राइट है, फील होता है कि इससे भी ज्यादा बढ़ के कुछ ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए जब बाबा मिलता है तो एक तरह से जैसे रूह के अंदर जो दिल है ना, वो बाबा खींच लेता है, पकड़ लेता है। फिर भी आत्मा को अपना जर्नी, अपना सफर पूरा करना होता है, तो यहाँ वहाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो रहता ही है। सो उसके 7 साल बाद अपना पढ़ाई पूरा करके मैं 1994 में ऑस्ट्रेलिया गई। वहाँ पे पक्की ब्राह्मण तो नहीं थी मैं, मना एक्सपीरियंस तो सब था बाबा का, परंतु एक तो होता है जब माँ बाप के साथ ज्ञान में आओ ना, तो अपने पैरों पे खड़ा होना, बाबा के साथ रियल कनेक्शन रखना, वो नहीं होता है। और लकली मेरे मदर फादर ने कभी मुझे ऐसे फोर्स भी नहीं किया था कि आपको चलना ही चलना है। उन्होंने कहा था जब आपका टाइम आएगा, जब आपको ठीक लगेगा तो आप आना। तो जब ऑस्ट्रेलिया गए तो एक टाइम होता है, समय होता है, और एक होता है जगह, और तीसरा होता है साथी। तो टाइम तो राइट था 1987 में, ज्ञान लेना ही था, परंतु ब्राह्मण बनने के लिए राइट सर्कमस्टांसेस नहीं थी, जगह नहीं थी। चंडीगढ़ में पक्का नहीं बनना था, हालांकि फैमिली पूरी ज्ञान में चलती थी। पर जब ऑस्ट्रेलिया गए, जैसे ही कदम रखा वहां और वहां के ब्राह्मणों से मिले, ऐसे लगा कि ये भी मेरा परिवार है, ये लोग मेरे हैं। इंग्लिश में बिलोंगिंग कहते हैं ना, अपनापन का फीलिंग नहीं होता, नहीं, वो इमीडिएटली वो फीलिंग आ जाता है कि इनसे तो पहले मिल चुकी हूँ, जैसे एक कनेक्शन का फीलिंग आ जाता है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद मेरा सेवा का पार्ट ज्यादा भारत से बाहर का था, इसलिए मुझे वो जो पक्का ब्राह्मण बनने का निश्चय करना था वो भी भारत से बाहर ही हुआ। तो इसलिए 1994 में ऑस्ट्रेलिया जाके बहुत ही जल्दी वहाँ सिडनी सेंटर में मुझे फीलिंग आया कि यही मेरा जीवन है और तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। उन दिनों में मैंने जॉब शुरू किया था वहाँ पे, और दुनिया की हालात देखकर, वो भी कितने साल पहले, उसी टाइम पे मुझे लगता था कि यहाँ तो इस दुनिया में जीना कोई वैल्यू का लाइफ नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे जो देही अभिमानी की स्थिति समझा था और आज जो मैं समझती हूँ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और अगर मैं अपना अनुभव सुनाऊं तो मैं तो यही कहूंगी कि हमारा जो लाइफ है ना, पूरा ब्राह्मण लाइफ का, हर एक का, वो एक ऐसा जर्नी है, ऐसी सफर है जो हमको पवित्रता तो है, प्यूरिटी की ओर तो खींचता ही है, परंतु देही अभिमानी की स्थिति, रियल देही अभिमानी की स्थिति, उसकी ओर ही खींचने वाली है। ये पूरा सफर है ना, तो सिर्फ 100% सोल कॉन्शियसनेस, देही अभिमानी स्थिति में कैसे रहना है, उसी के लिए है। क्योंकि पहले तो मैं समझती थी कि सबको दे जैसे दे, नहीं ना देख के आत्मा देखो, इसको कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस, देही अभिमानी स्थिति, राइट? बचपन में तो यही सोचते हैं ना। अच्छा, फिर जब मैं ड्राइविंग सीखी तो कोई रॉन्ग ड्राइव करता था तो मैं कहती ये कैसी आत्मा है, है ना, ये कैसी गलत जगह में पार्क किए आत्मा, तमीज वाली आत्मा नहीं है, ऐसे ही मैं बोलती थी ना, उसको किसने सिखाया, तो इसको क्या देही अभिमानी स्थिति कहेंगे, क्यों, आत्मा ही तो बोल रही थी मैं है ना, किसी की गलती देख ली तो क्या कहते हैं, ये कैसे ज्ञान सुनते हैं, रोज मुरली में आते फिर भी देखो तो सही कैसे, नहीं हा? तो किसी जो मनन चिंतन चलता है ना, एक तरफ से बुद्धि उधर खींच रही है कि देही अभिमानी स्थिति में रहो, दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, अंदर कमेंट चल रहे हैं। तो मैंने तो जो देखा है ना अपने पूरे लाइफ में, ब्राह्मण लाइफ में, एक एक लेयर ना खुलता गया। क्योंकि जब हम ब्राह्मण लाइफ में आते हैं तो कितने जन्मों का धूल मिट्टी हमारे ऊपर ऑलरेडी जमी हुई होती है, उसको निकालने के लिए पहले तो पानी चाहिए, धूल मिट्टी होती है, किचन की सफाई करते हैं, रसोई की सफाई करते हैं तो पहले तो पानी डालते हैं, नहीं निकलता तो साबुन डालते हैं, नहीं निकलता है तो जिफ डालते हैं, है, विम डालते हैं, नहीं निकलता है तो तो थोड़ा सा वो एसिड, हाँ बिल्कुल है ना। तो बाबा का काम यही है और हमारा सफर यही है, पहले प्यार से, पानी से, फिर थोड़ा याद से, भावना से, फिर थोड़ा सा जिफ का टाइम आता है, आखिर एसिड, और एसिड का टाइम अभी चल रहा है। तो कहने का भाव ये है कि पहले जब मैं वहां गई तो देही अभिमानी स्थिति को बहुत सिंपल रीति से समझती थी, और फिर जब मैं अपने को देखने लगी तो ऐसे लगा कि जब कोई सेंटर आते थे तो ठीक है हम आत्मा को देखते हैं, परंतु आत्मा के साथ साथ उनके जो सारे हैबिट्स हैं, आदतें हैं, रहन सहन, किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से चलते हैं, क्या खाना खाते हैं, एवरीथिंग, सब कुछ, एक एक चीज को मन में रखते हैं। और जैसे ही अंदर मन में रख लिया, बुद्धि में, उस चीज को आपने सेव किया, उस फाइल को आपने यहां सेव कर लिया, तो क्या होगा, जब आप उस आत्मा के साथ लेन देन करोगे तो वो एक फिल्टर की तरह आपके वाइब्रेशंस को और आपके व्यवहार को, आपकी वृत्ति को अफेक्ट करेगा। समझ में आया? कुछ भी अगर आपने अंदर स्टोर किया, नोट किया, वो अंदर जाके एक फिल्टर बन जाता है। आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, आंख वाला डॉक्टर होता ना, तो अगर आप, मैं देख रही हूं कई लोगों ने चश्मे भी पहने हुए हैं, तो वो क्या कहते हैं, आपको एक लेंस डालेंगे, कहेंगे ये बेटर है कि ये बेटर है, और कभी कभी तो समझ में नहीं आता, एक जैसे ही होते हैं, पर फर्क है, इतना मामूली सा फर्क होता है, ये बेटर है कि ये बेटर है। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण लाइफ में भी बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म माया आती है और उसी से हम हार खा जाते हैं, मार खा जाते हैं। तो इसलिए शुरू में तो मोटे मोटे रूप में ऑस्ट्रेलिया में अपने को चेक करती थी, क्योंकि वहां ना बहुत सारे, बहुत प्रकार के धर्म भी, कल्चर्स भी आते थे सेंटर में, तो हर एक बैकग्राउंड को देख के, वैरायटी देख के अच्छा भी लगता था, पर ऐसे भी लगता था ना, ये कैसे लोग हैं वहां के, वियतनामीज लोग, चाइनीज लोग वहां बहुत है ऑस्ट्रेलिया में, और मैंने तो कभी इन लोगों के साथ ना डील नहीं किया था, कभी इंडिया में रहते हुए बात भी नहीं की थी। तो पहले तो मोटे मोटे रूप में हम अपना चेकिंग करते हैं, फिर जैसे जैसे अपना ब्राह्मण लाइफ आगे जाता है, तो अगर आपको किसी की सेवा करनी हो ना, तो पहले अंदर डीप डीप वाइब्रेशंस को चेक करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में खैर ब्रह्मा कुमारी की संस्था एक्सेप्टेबल है, मतलब हम सफेद कपड़े साड़ी पहन सकते हैं, बैज पहन सकते हैं, तो कम से कम हम अपना जो ज्ञान है वो खुलेआम से, ओपनली हम औरों को सुना सकते हैं। सेंटर्स भी बकायदा ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, परंतु उसके बाद जब मैं अबू धाबी गई 2008 में, यहां आप में से कोई दुबई गए हैं, दुबई या अबू धाबी नहीं गए होंगे, एक दो तो होंगे जरूर, हाँ है ना, तो वहां का कल्चर तो बिल्कुल ही अलग। तो अबू धाबी राजधानी है वहां उस देश के, यूएई की, और वहां के जो लोग हैं ना, अरब्स हैं, मुस्लिम्स हैं। तो जब मैं वहां गई तो मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था, वहां जानकी दादी ने इतना ही मुझे कहा था कि जो वहां के लोग हैं ना पक्के, जो उस देश के लोग हैं परमानेंट, उनकी सेवा करो, भारतवासियों की नहीं, वो तो अपने आप हो रही है, उनकी सेवा करो। अभी मुझे कुछ ना उनके बारे में नॉलेज, कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था, और वहां गई तो उनका तो वेश भी कितना फर्क ना, वहां के आदमी लोग सब व्हाइट व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, सिर पे भी बांधते हैं, और लेडीज तो पूरा नहीं बुरखा पहनते हैं, काला काला। तो खैर है तो बहुत मल्टीकल्चरल है, वहां के वेस्टर्न लोग भी बहुत हैं, इंडियंस भी बहुत हैं, बट दादी ने खास मुझे कहा था उनकी सेवा करो। तो ब्रह्मा कुमारी इसका नाम लेना तो बिल्कुल ही नो। और मैं जब वहां ऑस्ट्रेलिया से गई तो मैं तो अपनी साड़ियां ही लेके गई थी, पर वहां पे साड़ी पहनो तो कोई आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि हिंदू मानेंगे, है ना। तो फिर दादी से फिर पूछा तो बोला आपको जो वेश पहनना है ना, जो ड्रेस पहनना है पहनो, सेवा करो। और उन दिनों में जानकी दादी का, आपको याद होगा, कुछ ऑपरेशन के कारण उनका साड़ी पहनना बंद हो गया था, और वो ड्रेस पहनती थी ना, एक अंत तक दादी ने एक ऐसे ड्रेस पहनना शुरू किया था, हाँ गाउन पहना था ना। तो मेरे को दादी ने फिर मुस्कुरा के बोला देखो मेरी भी साड़ी छूट गई, तुम्हारी भी साड़ी छूट गई। मैं कहा अच्छा तो फिर कुर्ता पजामा पहनना शुरू करो, ठीक है। बैज तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ओम शांति ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी नारायण का बैज तो हरगिज नहीं। तो फिर सोचना शुरू किया कि अभी इनकी सेवा मैं कैसे करूं, क्योंकि जैसे हम लोग कोर्स कराते हैं ना सबका, तो वो तो वहां उनको तो लक्ष्मी नारायण कौन है, सत्योग वगैरह ये तो बता ही नहीं सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके कोर्स देना शुरू किया घर पे। तो एक फ्लैट सा था वहां पे, थोड़े थोड़े लोग आने लगे। 2 साल के बाद ना तो मैंने थोड़ा हिम्मत ही हार लिया, मैं कही यहां तो कोई नहीं आने वाला। लोग आते थे, सीखते थे, कोई ऐसे रजिस्टर्ड सेंटर नहीं था, आ जाते थे, पर सुन के कहते थे ये बहुत अच्छा है, देही अभिमानी स्थिति बहुत अच्छी है, अल्लाह के साथ आपने कनेक्शन जुड़वाया हमारा, ये बहुत अच्छा है, अभी तो हमको नमाज करना बहुत अच्छा लगता है, और फिर चले जाते थे। ये भी कहते थे कि आपने जो रियल इस्लाम है ना, जो रियल मुस्लिम्स को जो करना चाहिए वो हमको सिखाया। फिर ओम शांति आते देखते बस। फिर एक बारी मैं यहां मधुबन में आई थी, 2 साल हो गए थे मेरे को वहां, तो मैंने जानकी दादी को बोला कि दादी आप मेरा टाइम वेस्ट मत कराओ, मैं वापस चली जाती हूँ ऑस्ट्रेलिया, वहां कोई नहीं आने वाले ज्ञान में। तो दादी थोड़ा मुस्कुरा के थोड़ा समझाने लगी, पर मैंने कहा नहीं दादी बहुत हो गया, 2 साल मैंने ऐसे ही यू नो सिंपल सिंपल ज्ञान, आत्मा परमात्मा के बारे में वो भी शब्द चेंज कर करके मैंने समझाया है, उसका कुछ असर हो ही नहीं रहा है। तो दादी ने कहा, दादी गुलजार है ना, वो बैठे हैं अपने वहां कॉटेज में साथ में, आप जाके उनसे मिलो। तो मैं चली गई, मैंने कहा पता नहीं क्यों भेजा दादी ने। तो वहां गई तो दादी गुलजार तो आप जानते हैं ना, रियली शांति शक्ति का स्तंभ, आप उनके आसपास भी जाए तो कितना शांति का वाइब्रेशन, नहीं सुकून मिलता था। तो वहां मैं गई तो दादी को देख के जैसे मेरे मन में थोड़ी शांति आई। तो फिर दादी ने पूछा कैसे आना हुआ, तो मैंने कहा जानकी दादी ने भेजा। अच्छा, तो थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर बोला सब ठीक है। मैं कहा नहीं दादी कुछ ठीक नहीं है, वहां की सेवा चली नहीं रही है, मैं तो यहां कंप्लेंट करने आई थी दादी जानकी को, उन्होंने मैं आपको आपके पास भेज दिया। अच्छा, तो मैंने कहा आपका क्या राय है। तो थोड़ा सा मुस्कुरा के दादी बोले, सोना आप उनको ना उनकी भाषा में समझाओ, उनको बोलो आप रूह हो, अल्लाह मालिक है सबका, एक ही है। अच्छा, आपको जन्नत जाना है ना, तो जो मैं कहूंगी ना आप वो फॉलो करो। बोला आप थोड़ा ना ऐसे शब्द यूज करो और उनको बोलो आप अल्लाह के पास लेके जाओगे, जन्नत लेके जाओगे, और फिर कोर्स कराओ, बताना कि ये जो कोर्स है ना जन्नत जाने के लिए कोर्स है, ऐसे करके बोलो। मैं तो जैसे जैसे बाबा ने अंदर कुछ सर्जरी करा ली मेरी, वहां से निकली तो मैं चलो एक और साल वहां बैठ के देखेंगे। फिर मैंने पूरा अपना प्रोग्रामिंग अंदर चेंज किया, और दादी के ये शब्द कहने से ना मेरे को एक और फीलिंग आई कि हमारी दादियां जो थी ना, उन्होंने कभी ना हिम्मत हारी ना बाबा का काम छोड़ा, बाबा का कार्य है होना ही है, उनके अंदर निश्चय इतना पक्का था। तो जब उनको देखा मैंने और मैं थोड़ा सोचने लगी, तो मैंने सोचा मैंने कैसे सोच लिया कि ये यहां कुछ नहीं होने वाला है, बाबा ने अगर मुझे यहां भेजा है तो ठीक है। 2 साल चले गए, रोज अमृत वेला के लिए तो मैं उठती हूं ना, मुरली तो सुनती हूं ना, तो कुछ तो वाइब्रेशन बन रहा है ना, कुछ तो एनर्जी फैल रही है, तो मेरे अंदर भी हिम्मत आ गई। दूसरी बात मैंने जो कैच की कि दादियों के अंदर उन आत्माओं के प्रति इतना प्यार, इतना स्नेह, चाहे वो दूसरे धर्म के होंगे, चाहे दूसरे कल्चर के होंगे, चाहे उनका लाइफ बिल्कुल हमसे उल्टा 100% अलग सा हो। उन्होंने अपनी भावना नहीं छोड़ी, बाबा के बच्चे हैं, उनके जो शब्द है ना वो यूज करो ऐसे करके। तो ठीक है, वहां जाके फिर मैंने शुरू किया, बिल्कुल अपना माइंड सेट चेंज किया, वाइब्रेशन ही मेरे अलग सी हो गई। कहां पहले मैं सोचती थी मैं पीके हूं, वो मुसलमान है, मैं वेजिटेरियन हूं, वो नॉन वेज खाते हैं। ये जो फीलिंग है ना, हम ये आप वो फीलिंग चली गई। उसके बाद तो मेरे को एक ऐसी फीलिंग आई कि ये मेरे भाई है, रियली वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं ना, कहना एक चीज है, रियली फील करना दूसरी चीज है। क्योंकि मुझे जितने भी मेरे ऊपर लेयर्स थे, मिट्टी थी ना, धूल थी, वो भी एक तरह से सूक्ष्म में बाधा बनता है मन में कि ये लोग हमसे डिफरेंट है, अलग है, वो भी चली गई। और जब मैं मिलती थी लोगों से तो मुझे लगता था बाबा ये तुम्हारा बच्चा एक आ गया, दूसरा बच्चा आ गया, तीसरा बच्चा आ गया। और उनका चलना फिरना, किस तरह से वो खाते पीते, जो भी कहते थे, वस्त्र ड्रेस वगैरह सब कुछ ना देखते हुए, फिर मेरे अंदर जो लेवल आई ना सोल कॉन्शियसनेस की, देही अभिमानी स्थिति की, वो अलग थी। तो जब 3 साल पूरे हुए ना तो बाबा का पहला बच्चा निकला। और मैंने देखा कि जैसे जैसे हमारी स्थिति ऊपर चली जाती है ना, शक्तिशाली बनती जाती है, वैसे ही हम सेवा में विजय नंबर्स के थ्रू नहीं, परंतु रियल सेवा जो होती है ना, रियल सेवा क्या है, हर एक आत्मा को खुश रखना, हर एक आत्मा को शांति देना, हर एक आत्मा को सुकून देना, वो कर पाते हैं। ज्ञान देना तो इजी है, 7 दिन का कोर्स कईयों ने कराया होगा, चाहे सेंटर में कराते हो, चाहे घर पे कराते हो, चाहे किसी को ऐसे ही डे बाय डे कॉन्वर्सेशन में, चिट चैट में ज्ञान तो देते ही आ रहे हैं। परंतु डीप आत्मा को टच करना, आत्मा में ये फीलिंग आए यही लोग हैं, उसके लिए जो चाहिए ना, ऐसी स्थिति चाहिए जिसमें जब हम किसी को देखते हैं, चाहे वो रॉन्ग रीति से व्यवहार कर रहे हो, वो मन में ना रखे बिल्कुल भी। आजकल बारिश के मौसम में जब गाड़ी चलाते हैं तो वाइपर चलाते हैं ना गाड़ी पे, उसके बगैर तो चलना ही नहीं होता ना। तो मेरी आजकल की चेकिंग यही चल रही है कि जो आज के दिन में हुआ, जो अंदर गया वाइपर चला के, कुछ ना रहे। क्योंकि जैसे पहले बोला, जो भी अंदर रहेगा वो फिल्टर बनेगा, वो आपकी दृष्टिकोण को थोड़ा नीचे लेके आएगा। जो बाबा की दृष्टि है हर एक बच्चे के ऊपर, चाहे बीके चाहे नहीं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे नहीं हो, चाहे संपर्क वाली आत्मा हो, बाबा की जो दृष्टि है ना वो इतनी प्रेम भरी कि उस आत्मा को मालूम है कि ये मेरा पिता है, ये मेरा मालिक है। चाहे नास्तिक भी कोई होता है ना तो वो कहता है एक एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी, ऐसे करके कहेंगे, नाम नहीं देंगे, भगवान नहीं बोलेंगे, पर एनर्जी को तो मानेंगे। और इतना भी कहते हैं कि वो एनर्जी बहुत सुंदर है, इस सृष्टि को जो जिस एनर्जी ने बनाया है वो बहुत सुंदर है, वेरी गुड कहते हैं ना, वेरी गुड एनर्जी, प्योर एनर्जी, तो नास्तिक लोग भी फील करते हैं। तो अगर हमको बाप समान बनना है, आप सब इस सफर में है ना, सब इकट्ठे ही हम मंजिल तक जा रहे हैं, तो डीपली चेक करना है कि कोई भी बात अंदर रहे ना। आजकल ज्यादातर मैं देख रही हूं माताएं बैठी हैं, तो हम लोग जब जाते हैं बर्तन खरीदने के लिए, तो कैसे कब बर्तन खरीदते हैं, आजकल नॉनस्टिक का जमाना है ना, नॉनस्टिक बर्तन में क्या होता है, कुछ जलता नहीं है, है ना, तेल कम डालना पड़ता तो हेल्दी भी होता है, हा? और दूसरी बात है आप छोड़ भी दो दो तीन मिनट के लिए तो जलता नहीं है। अच्छा फिर सफाई करने में कितना इजी होता है नॉनस्टिक में, है ना, पुराने जमाने में तो घिसना पड़ता था ना राख लेके, तो अभी अपनी बुद्धि को कैसे बनाना नॉनस्टिक, नॉनस्टिक बुद्धि मतलब कुछ उस पे चिपक ना जाए, आपको बार बार तेल ना लगाना पड़े कि नहीं नहीं अभी अच्छा सोचो अच्छा सोचो, नो, नेचुरली नेचुरली नॉनस्टिक बुद्धि में कोई गलत बात चिपकती नहीं है, चिपकेगी तो फिर साफ करना पड़ेगा, तो नॉनस्टिक बुद्धि में चिपकेगी नहीं, बाय चांस थोड़ा चिपक भी गया तो साफ करना इजी इजी। इसलिए देही अभिमानी स्थिति माना, किसी एक भी आत्मा के प्रति इतना भी नेगेटिविटी की फीलिंग ना हो, चाहे वो आपके घर वाले फैमिली परिवार वाले ना हो, चाहे वो आपके पड़ोसी, चाहे वो आपके सेंटर वाले, चाहे वो दूसरे धर्म वाले, चाहे वो लोग जो जानबूझ के गलत काम कर रहे हैं, उनका पार्ट ही ऐसे बना हुआ है, जानबूझ के कामी क्रोधी जो भी, जिनके बारे में हम बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं, उनके प्रति भी कुछ नहीं। और इसका प्रूफ क्या है कि मेरे मुंह से कमेंट, क्रिटिसिज्म, जजमेंट कुछ नहीं निकले, जो है जैसे है। देही अभिमानी स्थिति इतनी ऊंची हो कि जैसे बाबा का प्यार है हर आत्मा के लिए, बाबा की एक्सेप्टेंस है, तो बाबा को मालूम है तो नाटक चल रहा है, नाटक में बहुत सारे एक्टर्स चाहिए हैं, एक्टर्स के पार्ट तो अलग अलग होंगे ना, तो इसलिए सबको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आगे जब जाएंगे ना तो जो नॉनस्टिक पैन के नीचे आग है ना, वो आग बढ़ती जाएगी, मतलब परिस्थितियां और ही मुश्किल हो जानी है, लोगों का जो बिहेवियर है दुनिया में अभी भी जो देख रहे हैं, जो गलत डिसीजन ले रहे हैं, पॉलिटिशियंस को देख लो, मेडिकल को देख लो, किसी को भी देख लो, तो कभी कभी लगता है ना क्या कर रहे हैं, ऐसे क्यों निर्णय लिया गया, ये और ही खराब होता जाएगा, और ही सिचुएशन दुर्गति को पाता जाएगा। इसलिए अभी से ही नॉनस्टिक को चेक करते रहो, अगर कोई बात लग जाती है, चिपकती, आपको मालूम है दिल में कुछ रह गया, उसका उसकी सफाई करना जल्दी से जल्दी बहुत जरूरी है। आपने कभी ऐसे किया कि किसी बर्तन को अच्छी तरह से ना साफ ना किया हो, हा? फिर उसको यूज किया तो क्या होता है, और ही चिपकता है ना, ऐसे होता है ना, तवा को साफ नहीं करो ऑलरेडी उस पर
कुछ लगा हुआ हो और आप दूसरी रोटी डाल दो या दूसरा पराठा डाल दो तो क्या होगा?
इसलिए अभी आप 2-3 दिन के लिए मधुबन में हो, मेरी आशा है कि आप जाने से पहले अपनी नॉन स्टिक बुद्धि को साफ करें और रोज सोने से पहले, बाबा कहते हैं ना चार्ट अपना चेक करो, तो गाड़ी का विंडस्क्रीन वाइपर है ना वो लगाओ, सब कुछ मिटाओ मिटाओ मिटाओ, बस एक बाबा रहे, अच्छी नींद आए और नेक्स्ट डे जब उठते हैं अमृत वेला तो ये फीलिंग हो कि पूरी दुनिया जो भी कर रहे हैं जैसा भी पार्ट है ठीक है, इट्स ओके, हम आगे बढ़ते रहे और वो जो एक मंजिल है ना बाप समान, इतनी ऊंची स्थिति, कभी भी मेरे फीलिंग्स, मेरी शुभ भावना शुभ कामना में जरा सा हलचल ना आए, अटल अडोल स्थिति, कोई कैसा भी सीन देखने को मिले, चाहे ब्राह्मण परिवार में चाहे बाहर, ठीक है। तो ये हुई मेरी छोटी कहानी, छोटा सा अनुभव, 2 मिनट याद में बैठे और